قرآن ایک ایسی کتاب ہے نا جو دل پہ اتری، باقی جو علوم ہیں وہ عقل کی پیداوار ہوتے ہیں، جیسے شعر جو ہے وہ عموماً دل کا جذبات کا اظہار ہوتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے دوسروں کے اوپر جلدی اثر ہوتا ہے. قرآن کے علم اور دوسرے علوم میں فرق یہ ہے کہ دوسروں میں خود کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن قرآن کا علم اس وقت تک آتا نہیں جب تک خود کو بیچ میں نہ رکھو، اس لیے کہ فیہ ذکرکم، یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں. فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے. ہم تو ہمیشہ یہی پڑھتے رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، سکون کا باعث ہوتا ہے، خشیت الہی پیدا کرتا ہے، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا. یہاں لکھا ہوا یہ ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر ریورس ایفیکٹ ہوتا ہے، الٹا اثر ہوتا ہے، ان کو ایک ہی چیز سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. وہی دوا جو ایک کی زندگی بچانے کا سبب بنتی ہے، دوسرے کے لیے موت کا سبب بن جاتی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے تو دل نرم ہونے چاہیے، اللہ کے ذکر سے دل سخت ہو گئے. تو کیا ذکر میں کوئی خرابی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی اسباب کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ کسی نے لکھا کہ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اتنے لوگ جو قرآن کو انٹلیکچولی بہت سٹڈی کر چکے ہیں، وہ اس سے ہدایت کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ آگے لکھا نا اولئک فی ضلال مبین. آج مجھے اس کا جواب مل گیا ہے کہ نہ وہ اسے اس طرح سنتے ہیں جس طرح رب چاہتا ہے کہ سنیں، نہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے رب چاہتا ہے کہ پڑھیں. اس کے بہترین حصے کی پیروی ہی نہیں کرتے، بلکہ فضول بحثوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے سینے اسلام کے لیے کھلنے ہی نہیں دیتے. جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا نا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے فائدہ نہ دیں گے، کام نہ آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، سلامت دل لے کر آئے. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس روز مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی. دنیا میں اگرچہ بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن دو چیزوں کا بطور خاص تذکرہ ہے، مال اور اولاد کا، کہ یہ کام نہیں آئیں گے. اس لیے کہ دنیا میں انسان ان دو چیزوں کی محبت میں باقی چیزوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی گرفتار ہے. مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. اور اسی طرح وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. اور اسی طرح اولاد بھی، اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں. ایک اور جگہ پر اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ دو چیزیں انسان کی کمزوری ہیں. دنیا میں انسان کے غلط رویوں کے عمومی طور پر ذمہ دار بھی یہی دو عناصر ہیں. انسان کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جن دو چیزوں کے پیچھے تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، اور جن دو چیزوں کے حصول میں اور ان کو چاہنے میں اور ان کو سنبھالنے میں اور ان کی خاطر جو اپنی تمام طاقت اور صلاحیت استعمال کر رہے ہو، یہی دو چیزیں قیامت کے دن انسان کو پوچھیں گی بھی نہیں. پھر یہ کہ دنیا میں جیسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو عموماً وہ مشکلات دو طرح سے حل ہوتی ہیں. جیسے कुछ काम माल से हो जाते हैं और कुछ औलाद कर देती है। लेकिन क़यामत के दिन जो मुसीबत पड़ेगी, उस रोज़ वो दुख दर्द न माल से दूर होगा और उस दुख दर्द और तकलीफ़ में औलाद भी नहीं काम आएगी। इंसान अगर अपनी औलाद को फ़िदिये में देकर ख़ुद बचना चाहे उस दिन के अज़ाब से, तो बच ना सकेगा। हाँ, जो चीज़ वहाँ काम आएगी, जो चीज़ अल्लाह ताला इंसान से चाहता है, वो क्या है? इल्ला, ये इल्ला का लफ्ज़ काबिल गौर है। मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, जो अल्लाह के पास कल्बे सलीम लेकर आया, सलामत दिल। माल और औलाद की बजाय जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो कल्बे सलीम है। गोया आखिरत में निजात पाने के लिए, आखिरत की मुश्किलात से निबटने के लिए कल्ब सलीम ही चाहिए। कल्ब सलीम के अलावा कोई और कल्ब नहीं चाहिए। अच्छा, कल्ब की बात यहाँ क्यों की गई? इसलिए कि माल और औलाद में से भी ख़ास तौर पर बेटे, इन दो चीज़ों में इंसान का दिल लग जाता है। दुनिया में भी ज़्यादा दिल लगने का सबब अमूमन यही दो चीज़ें होती हैं, माल की कसरत और बेटों का होना। दुनिया के गमों से अमूमन ये दो चीज़ें बेनियाज भी कर देती हैं। तो चूँकि इंसान अपना दिल इनको दे डालता है, माल के लिए और औलाद के लिए अपना दिल हार बैठता है, फरमाया कि जिस दिल में माल और औलाद की मोहब्बत बसी हुई होगी, अल्लाह को वो दिल नहीं चाहिए वहाँ, बल्कि वो दिल चाहिए जो कल्बे सलीम हो। इल्ला का क्या माना होता है? जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इल्ला का लफ्ज़ बहुत अहम है, मगर सिवाय, यानी एक्सक्लूसिवली क्या चाहिए? कल्बे सलीम। अगर कल्बे सलीम के अलावा कोई और कल्ब पेश किया तो वो कबूल ना होगा। अच्छा, बात यह है कि सिर्फ कल्ब की बात क्यों की गई है? इसलिए कि कल्ब जिंदा हो तो इंसान जिंदा है, अगर कल्ब पे कुछ बीत जाए तो इंसान बाकी नहीं रहता। अगरचे लफ्ज़ कल्ब या दिल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मुराद सारा इंसान ही है। मन से वैसे भी इंसान की तरफ इशारा हो रहा है, इल्ला मन, यानी इंसान, मगर जो इंसान, जो शख्स, जो कोई कल्ब सलीम के साथ हाजिर हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना कि اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب। इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो गया सारा जिस्म दुरुस्त, अगर वो बिगड़ गया सब कुछ बिगड़ गया। सुन लो, वो दिल है। दिल ही एक ऐसा ऑर्गन है ना जो किसी वक्त भी आराम नहीं करता, मुसलसल काम करता है। जब से हम पैदा हुए, बल्कि पैदाइश से पहले भी, माँ के पेट में भी दिल काम करना शुरू कर देता है। अगर ये काम ना करे और ये अपनी सही हालत पर ना हो, तो इंसान सही हालत पर कायम रह नहीं सकता, इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। तो दुनिया में भी ज़िंदगी की बुनियाद क्या है? कल्ब। और आखिरत में भी ज़िंदगी की बुनियाद और अच्छी ज़िंदगी की बुनियाद कल्ब, लेकिन सिर्फ कल्ब सलीम। इल्ला मन अतल्लाह بقلب سلیم। अब ये कल्ब सलीम क्या चीज़ है? कल्ब तो दिल है, और सलीम का लफ्ज़ सलामती से निकला है, सलामत दिल, महफूज दिल, बेऐब दिल, हर खराबी, बीमारी, बिगाड़, फसाद से पाक दिल। कौन सी खराबी और कौन सी बीमारी? खराबियों में मसलन पहली खराबी शिर्क, शिर्क और बिदत, अल्लाह के नाफरमानी के कामों से खाली दिल, जिसका दिल अल्लाह की नाफरमानी में लगता ही ना हो, अल्लाह की नाफरमानी को दिल ही ना चाहे, दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की चकाचौन और दुनिया की रौनक से महफूज दिल, कि वो ये सब कुछ देखे मगर किसी भी चीज में उसका दिल ना लगे, कोई भी चीज उसको अपील ना करे, दिल में जगह ना पकड़े। इसी तरह हर बुरे जज्बे से, हसद, शक, बदगुमानी, नफरत, अदावत, बुखल, इन सारे जज्बात से पाक दिल। बात यह है कि दिल एक ऐसी सेंट्रल जगह है जिस्म में कि जो चीज वहां जगह बना ले वो पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेती। मसलन अगर शिर्क वहां जगह बना ले तो सारे दीन का बिगाड़ हो जाता है, सारी इबादात का सत्यानाश हो जाता है। अगर माल की मोहब्बत यहां जगह बना ले तो क्या होता है, इंसान अपने रिश्तों को, अपने करीब अजीज और बहुत सी कीमती चीजों को उस पर कुर्बान कर देता है। इसी तरह अगर इस दिल में किसी के लिए हसद पैदा हो जाए तो हसद से भरा हुआ दिल पूरे जिस्म को और पूरे एक्शंस को और पूरी एक्टिविटी को अपनी लपेट में ले लेता है। चेहरे के तासुरात से लेकर एक्शंस और इंसान का रवैया और चाल ढाल हर चीज उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अगर किसी के लिए बदगुमानी ठहर जाए इस दिल में, मसलन अल्लाह के बारे में शक ठहर जाए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई एक छोटी सी बात पे शक ठहर जाए, या किसी भी जगह पर यह कांटा अटक जाए तो इंसान आगे नहीं चल सकता, कोई काम फिर सही हो ही नहीं सकता। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही इताअत कर ही नहीं सकते जब तक आप उनको अपने दिल में जगह ना दें। इसीलिए क्या फरमाया, खुदा की कसम तुम में से कोई शख्स मोमिन ही नहीं हो सकता, उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिदैन, औलाद और तमाम इंसानों से बढ़ के ना चाहे। क्यों कहा गया मन अहब्ब लिल्लाहि व अबغض लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल अल-ईमान, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए बुग्ज रखा, अल्लाह के लिए कुछ दिया, अल्लाह के लिए रोक दिया, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। क़ल्ब सलीम का होना, दिल का महफूज होना तमाम नेक आमाल की बुनियाद है। देखें कि इरादे, नियतें, अज़ायम, ये सब भी तो दिल के अंदर होते हैं। आप बज़ाहिर दिखावे में बहुत कुछ करते रहें लेकिन अगर दिल साथ नहीं, नियत नहीं, तो कुछ भी कबूल नहीं, बड़े से बड़ी इबादत कबूल नहीं। फिर इसी तरह बसाओ का दिल एक चीज़ को चाहता है और आप उसे पलटाते हैं अल्लाह की इताअत की तरफ, तो आपने क्या किया, दिल को महफूज कर लिया। मसलन दिल में बुखल भरा हुआ है, किसी को कुछ देने को दिल नहीं चाहता, आप उस जज्बे को काट के उसको ख़त्म करके अपने आप को पलटाते कि नहीं मुझे देना है, दिल की मानते नहीं, तो आपने दिल को बर्बाद होने से, ज़ाया होने से बचा लिया। यानी कल्बे सलीम का मतलब ये नहीं कि आपके दिल में कोई बुरा ख्याल आए ही ना, इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके दिल में दुनिया की कोई मोहब्बत या किसी भी चीज़ की कोई मोहब्बत आ नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकता। या नऊज़ बिल्लाह कोई शिर्क वाला या अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बुरा वसवसा आ नहीं सकता। सहाबा कराम में से एक साहबी ने कहा था ना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़कर वो बातें हम चाहते नहीं लेकिन अचानक हमारे दिमाग में ऐसी आ जाती हैं कि उनको मुँह पर लाएँ, इससे बेहतर है कि हम जल कर कोयला हो जाएँ। यानी अचानक दिल में कोई ऐसी बात आ जाती, ऐसा वसवसा आ जाता, बदगुमानी आ जाती। अब क्या मतलब कि दिल महफूज नहीं रहा, सलामत नहीं रहा, कि वसवसा आ क्यों गया, दुनिया की किसी चीज़ से मोहब्बत हुई? अब ये कि ये होनी नहीं चाहिए थी, आनी ही नहीं चाहिए थी इस चीज़ की मोहब्बत, किसी चीज़ में अट्रैक्शन महसूस होती, होनी नहीं चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। फिर दिल महफूज कैसे है अगर ये नहीं हो सकता? महफूज इस तरह कि हर वो नापसंदीदा चीज़ जो अंदर आ जाए उसको निकाल बाहर किया जाए कोशिश के साथ। मसलन आप देखें कि दिल को आप एक घर से मिसाल दे दें, जैसे एक घर होता है, क्या जलजले नहीं आएंगे? आएंगे, आते हैं तो क्या होता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं ना घरों में, क्या डस्ट नहीं आएगी घर के अंदर, चाहे आप सारी खिड़कियां बंद करके रखें, आती है ना, फिर क्या करते हैं, पूछ डालते हैं, क्या कूड़ा करकट नहीं आता? आता है, क्या करते हैं, रखे नहीं रखते, निकाल देते हैं। तो कल्बे सलीम से मुराद ये है कि हर वो चीज जो इसके अंदर दरार डालने को आए, कोई जलजला तूफान आए, कोई आंधी बारिश आए, कोई ऐसी चीज आए, वो तो आएगी तबई हालात और मौसम के तहत। इंसान इस दुनिया में रहते हुए हर रोज कोई ना कोई आंधी तूफान देखेगा दाएं बाएं, जो उसके दिल को हिला मारेंगे, लेकिन इंसान को क्या करना है, इन सब चीजों का मुकाबला करना है। जहां कहीं दरार पड़े फौरन फौरन उसकी इस्लाह कर देना है, जहां कहीं को रखना होने लगे उसको भर देना है, जहां कहीं को रंग उतरने लगे उसको कर देना है, कोई मैल कुचैल आने लगे उसको साफ कर देना है, ताकि जब हम दुनिया से रुखसत हों तो इस हाल में रुखसत हों कि कोई ऐसी चीज जो अल्लाह ताला को पसंद ना हो वो हमारे दिल के साथ टिकी हुई ना हो, सब हटी हुई हो, दाग धब्बे सारे के सारे मिटे हुए हों। ये उसी वक्त हो सकता है जब साथ साथ मिटाते रहें, घर उसी वक्त साफ रह सकता है जब साथ साथ सफाई करें। अगर आप कुछ दिन के लिए भी छोड़ देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो दिल पे एक स्या नुक्ता लगता है, जब इंसान तौबा कर लेता है, इस्लाह कर लेता है, तो क्या होता है, नुक्ता मिट जाता है। लेकिन अगर इंसान छोड़ देता है तो वो नुक्ता फैलने लगता है, और स्याही फैलते फैलते पूरे दिल को अपने कंट्रोल में ले लेती। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैवंद, ये माल और ये रिश्ते, इनसे इंसान को मोहब्बत होती है, लेकिन बुतान वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या है, बुत हैं जिनको इंसान पूछता है, कौन से, ख्याली, अपना ख्याल होता है ना जो किसी भी चीज को खूबसूरत या बदसूरत कर देता है। यौम ला यन्फाउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। एक आम सेहतमंद दिल है जिसका रंग खूबसूरत है, सेहतमंद, लेकिन एक सिगरेट पीने वाले इंसान का दिल है, सिगरेट के धुएं से दिल का हाल ये हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्याही का जिक्र किया था ना, इसी तरह इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब हम गुनाह करते हैं तो क्या होता है, ये सेहतमंद दिल, कल्बे सलीम जो होता है, कल्बे बीमार हो जाता है और गुनाहों की मैल से स्याह होता चला जाता है। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, ये दिल चाहिए, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, सलामत दिल चाहिए और बस, और नहीं चाहिए, सब दूसरे रिजेक्टेड हैं, काम ही नहीं आएंगे वहां। तो हम सबको किस चीज पे तवज्जो देनी है, अपने दिल की इस्लाह पे, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट पे, क्योंकि वो सेंटर है सारी चीजों का, सारे बातों और कामों का, दिल की इस्लाह और दिल का जंग और दिल का मैल कुचैल दूर करने के लिए दो नुस्खे अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। आपने फरमाया कि दिलों को जंग लग जाता है जैसे लोहे को लगता है, तो लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोहे का जंग दूर करना तो हम जानते हैं, दिलों के जंग को कैसे धोएं, कैसे दूर करें? आपने फरमाया दो चीजें, कसरत से कुरान की तिलावत और मौत की याद। मौत को याद रखोगे तो दुनिया की मोहब्बत कम होती जाएगी। अब आपने कुरान पढ़ लिया, अब आप अगर सिर्फ तिलावत करें तो भी इंशाल्लाह वो फायदा देगा, कसरत से तिलावत को मामूल बना लें। और खास तौर पर एक बात हमेशा याद रख, जिस वक्त दिल डावाडोल होने लगे, जिस वक्त उदासी होने लगे, जिस वक्त परेशानी होने लगे, जिस वक्त ईमान का लेवल कम महसूस हो, कुछ भी देर किए बगैर कुरान खोल लें, कहां से, जहां से भी खुल जाए, जरूरी नहीं कि कोई खास सूरत सिलेक्ट करें, खोल लें, जो सामने आए पढ़ना शुरू कर दें, उस वक्त तक पढ़ते रहें जब तक इफाका ना महसूस करें, जब तक शिफा ना हो जाए। अगर समझें कि मुंह से लफ्ज ही नहीं निकल रहा, टेप ऑन कर दें। किसी भी अच्छे कारी की किरात आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए, इतनी ही ज़रूरी है जितना आपके पास आपके जिस्म पे पहना हुआ कपड़ा ज़रूरी है। साल के लिबास के बजट में किसी भी चीज़ में कमी कर लें। कोई एक अदद किरात किसी भी कारी की जो आपको पसंद हो ऑन कर लें और सुनना शुरू कर दें, क्योंकि कुरान सुनने के लिए। कुरान के बारे में क्या कहा गया? शिफा उल्लिमा फिस्सुदूर, शिफा उल्लिमा फिस्सुदूर। ये जो बीमारियां दिलों को लग जाती हैं उनके लिए शिफा है, लेकिन दवा लेंगे तो शिफा होगी ना। सिर्फ वो बंद रखे रहने से आपको शिफा नहीं होगी। दवा आपकी डिब्बिया में रखी हुई और ढक्कन बंद है और वो आपसे खुल नहीं रहा, खा आप रहे नहीं, आपका शिफा हो जाए तो नहीं खोल सकती। उसको खोलना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा और रेगुलर डोज लेनी पड़ेगी जब दर्द दूर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे पास दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक इनको मजबूत पकड़े रहोगे कभी गुमराह ना हो। और उनमें से एक कुरान है और दूसरी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। कुछ चीज़ें सलामत रहती हैं जब उनको छेड़ा ना जाए, लेकिन दिल उस वक्त सलामत रहता है जब इसको किसी मुफीद काम में लगा दिया जाए। किसी भी चीज़ के लिए जिए, खाली दिल नहीं जिए। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। मर्ज़े कोहन क्या होता है? पुरानी मर्ज़े, पुरानी बीमारियां जो लगी हुई हैं उनका इलाज इसी में है कि दिल जिंदा किए जाएं और हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया गया। वही इलाही दिलों की जिंदगी जिसको बारिश से तशबीह दी गई, दिल की जिंदगी का सबब है। मेरे उस्ताद ने मुझे नसीहत की थी दीन की खिदमत के लिए, सबसे पहले फहम सलीम, फिर कल्ब सलीम और फिर हब कवीम। हब हब मोहब्बत, कवीम दुरुस्त। दीन की सही समझ हो, कल्ब सलीम हो और उसमें हब कवीम हो, यानी ये तीन चीज़ें हों। दीन का इल्म जो अक्ल के ज़रिए आता है, अक्ल सलीम जब होती है तो तभी दीन सही तौर पर समझ आता है, और उसके लिए कल्ब सलीम का होना ज़रूरी है और फिर हब कवीम का होना ज़रूरी है कि इंसान मोहब्बत की सतह पर इन चीज़ों को ले। दुनिया के इल्म जो होते हैं वो मोहब्बत की सतह पर नहीं लिए जाते, उनके साथ हमारे इमोशंस इस तरह वाबस्ता नहीं होते। कहते हैं ना, तीन जगहों पर अपने दिल का जायज़ा लो, कुरान पढ़ते वक्त, जिक्र की मजलिसों में और तन्हाई के औकात में। अगर इन तीन जगहों पर दिल न लगे तो सोचो फिर तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है। इसलिए अल्लाह से कल्ब सलीम मांगो, यानी ए अल्लाह मैं तुझसे सालिम दिल मांगता हूँ, कल्ब सलीम मांगता हूँ जिसमें तेरी तरफ से आई हुई हिदायत समा जाए। हिदायत पर होने के लिए निशानी बाहर नहीं अंदर है, और वो दिल का इत्मीनान। हिदायत तलाश करने के लिए लोग अमूमन निशानियां कहाँ देखते हैं? दूसरे में, बाहर। हालांकि आप हिदायत इख्तियार तो करके देखो, फिर दिल टटोलो, वहां कितना गहरा सुकून है। आप देखें कि जब आप कुरान पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, कोई न गम है, न खौफ है, न किसी की बातों की परवाह है, न कुछ। जो भी मुश्किलात हैं सब भूले हुए होते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशना, बेपनाह सुकून। ये बेपनाह सुकून जो है ना, ये निशानी है कि आप हिदायत पर हैं। बातिल पर होकर जुर्म करके, जुल्म करके दिल सुकून में नहीं आ सकता। इत्मीनान कल्ब कभी नसीब नहीं हो सकता। जैसे कुरान पाक की एक और आयत में भी आता है ना कि अल्लज़ीन आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वतत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और उनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान पाते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुनो अल्लाह के जिक्र से दिल इत्मीनान पा जाते हैं। जिक्र का माना क्या होता है? याद करना। जब कोई आदमी अल्लाह ताला को उसकी पूरी अजमत के साथ पा लेता है तो उसके अंदर एक रूहानी हलचल पैदा हो जाती। उस हलचल से क्या होता है, हर वक्त उसको अल्लाह की याद आती है। ऐसा क्यों, बेख्तियार क्यों हो जाता है? अब सोते हुए उठ रहे अल्लाह, अब सोने जा रहे अल्लाह, अब कुछ देखते हैं फौरन अल्लाह। ये कैसे होता है? क्योंकि अल्लाह को शऊर के साथ पाया ना, तो दिल में एक इस्तराब है, उसकी याद है जो जबान पे बेख्तियार आ जाता है। कभी जबान से शुक्र के कलिमात निकलते अल्हम्दुलिल्लाह, कभी डर लगता है तो कहते अस्तग़फिरुल्लाह, कभी कोई अच्छी चीज देखते माशाल्लाह, हैरत होती सुभान अल्लाह। हमारी तो लुगत से ये बातें निकल गईं, और हमको तो ये लफ्ज बोलने में भी शर्म आती है। अब लोग क्या कहेंगे, मुल्ला नहीं हो गए? ये मुल्लानी के अल्फाज नहीं हैं, ये अल्लाह की मोहब्बत करने वालों के बेसाख्ता जुमले। लेकिन आप देखें कि आज के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर, बड़े बड़े घरों में रहकर, बड़े बड़े ओहदों और जॉब्स पे इत्मीनान से महरूम हैं, अजीब परेशानी का शिकार है। जितनी मादी तरक्की बढ़ी उतनी बेसुकूनी बढ़ी। हर तरफ कंफर्ट देने वाले सामान मौजूद हैं, थिक कारपेट्स, भारी पर्दे, भारी फर्नीचर, बेहतरीन खाने, उम्दा लिबास, लेकिन सुकून नाम की चीज कोई नहीं। ये सब चीजें अजनबी और मुंह चढ़ाती नजर आती हैं। क्यों? हकीकी खुशी नहीं लोगों के चेहरों पर। मस्नूई मुस्कुराहट के पीछे एक फिक्र की लहर है जो साफ देखी जा सकती है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि खुशी तो रूह को होती है ना, और रूह का सामान कुरान है जो रूहुल अमीन लेकर आए, और हम उसको खुश करना चाहते हैं मादी चीजों से। मसलन बच्चा खिलौना मांग रहा है और हम उसको खाना खिलाने लग जाएं तो वो खुश हो जाएगा? वो कहे मुझे खिलौना चाहिए, आप आओ खाना खाओ, और चीखेगा मैं खिलौना मांग रहा हूँ, आप मुझे खाना खिलाते हैं, क्योंकि वो तो आम तौर पे भी उसको खाना नहीं अच्छा लगता। हमारा हाल यही है। जिस चीज की खुशी जिस चीज में है वही मिलेगी तो रूह खुश होगी। अब देखें कि एक इंसान से मिलकर आपको खुशी होती, वो ना मिले, सैकड़ों लोग मिलकर रहे आपको, दिल का क्या हाल होता है? खुश होते हैं आप? नहीं। और वो एक मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि रूह की खुशी उसमें है। उससे ज्यादा खूबसूरत या मालदार या बड़े लोगों में नहीं है, उस एक में है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, उसकी रूह की खुशी उससे कमतर चीजों में नहीं है। ये बाकी सारी चीजें हमसे कमतर है ना, हम इनसे बरतर हैं। ये हमारे लिए जरूरत के लिए पैदा की गई, हमने इनको पूजना शुरू कर दिया, हमने इनमें खुशी तलाश करने शुरू कर दी। हमें अपने से बड़ी चीज में सुकून मिल सकता है जो हकीकी मानों में बड़ी है। और वो एक ही चीज है ना, अल्लाह। और जब तक उसको भूले रहेंगे, उसको फरामोश करेंगे, उसको छोड़े रहेंगे, हकीकी खुशी नहीं मिल सकती। अपने से कमतर में सुकून नहीं मिल सकता, अपने से बरतर में सुकून मिलेगा। الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته